कर चुके हैं और अब चौथा श्लोक मंगलाचरण का लोग करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग पीछे के 3 श्लोकों पर ध्यान दे चुके होंगे, याद कर चुके होंगे उसको अनुवाद के साथ। पहला श्लोक था ओम अज्ञानत निरांधस्य। कितने लोग इस श्लोक को बिना देखे बोल सकते हैं? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। और कितने लोग इस श्लोक को अनुवाद के साथ कह सकते हैं? हर बार केवल एक हाथ, वो भी 2-3। दूसरा श्लोक, कितने लोग बिना देखे श्री रूपम रूप गोस्वामी को जो प्रणाम है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, और अनुवाद केवल एक या 2 हाथों पर है। हम लोग फिर से शुरू करें। कृपया इनको भूलिए नहीं, अगर आपको याद नहीं रहता है तो कृपया लिख लीजिए। ये हमारी गुरु परंपरा को प्रणाम है, प्रार्थना है, और प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है, तो इसलिए इसको आप लोग गंभीरता से लीजिए। और विशेष करके आज का जो प्रणाम मंत्र है, प्रभुपाद प्रणति, ये श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। इसका इसे याद तो हम सबको होगा, लेकिन इसके अर्थ को भी हमें जानना चाहिए। तो आइए इस श्लोक को दोहराते हैं। ये जो प्रभुपाद के प्रति नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय, हम लोग ये वैसे गाते भी है ना, तो हम बोले इससे अच्छा आप में से कोई बोलिए, क्योंकि ये श्लोक तो सबको आता है, इसे याद कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप में से कोई इस श्लोक को बोलिए, बाकी लोग दोहराएंगे। एक लाइन में बोलिए ऐसे, ठीक है? हम बोलते हैं, बाद में आप बोले। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य चर्चा करेंगे। तो सभी प्रणाम मंत्र या तो उन आचार्यों की स्थिति या फिर उनके कार्यों को दर्शाता है। ये जो प्रणाम मंत्र हम लोग कहने जा रहे हैं, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये प्रणाम मंत्र केवल दो ही लाइन थे, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी नहीं था। पहले केवल नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी दिनामिने, इतना ही कहा जाता था श्रील प्रभुपाद के लिए। फिर एक समय उनके शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की कि हम लोग और भी आपका कुछ गुणगान करना चाहते हैं, तो फिर उस समय ये जो बाकी की आगे की दो लाइन्स हैं, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, ये भी इसमें जोड़ दी गई और ये पूरा प्रणाम मंत्र हुआ। तो ये प्रणाम है, सबसे पहले हम लोग करते हैं नमः ओम विष्णु पादाय। हम उनको प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है। विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भेजा है। कहाँ भेजा है? कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, इस पृथ्वी पर उन्होंने भेजा है कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, और वो कृष्ण को बहुत प्रिय भी हैं। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जिनका नाम है, इति नामिने उनको नाम दिया है। नमस्ते सारस्वती देवे, हम प्रणाम करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य को। यहाँ ध्यान रखना चाहिए सरस्वती देवी के लिए नहीं है, कई बार लोग ये भ्रम में पड़ सकते हैं। तो नमस्ते सारस्वती देवी अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य श्रील प्रभुपाद, नमस्ते सारस्वती देवी। जब श्रील प्रभुपाद ने ये दिया, जैसे हम बदला रहे थे कि पहले दो जो वाक्य थे, जो लाइन थे, उनमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुणगान नहीं था, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना की भक्तों ने कि हम और गुणगान करना चाहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही गुरु का गुणगान किया। ये नम्रता या ये नियम भक्ति का उन्होंने सिखलाया। उन्होंने, वो चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे अपने ही विषय में, कि उन्होंने शुरुआत की नमस्ते सारस्वती देवी, कि उन प्रभुपाद को जो सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं, अर्थात अपने गुरु का गुणगान उन्होंने किया। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु की वाणी का सारे जगत में प्रचार किया। और कैसे जगत में प्रचार किया? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश, ऐसे पाश्चात्य देश जो निर्विशेषवादी हैं, जो शून्यवादी हैं, अर्थात जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, सारे जगत को, सारे भौतिक अस्तित्व को शून्य मानते हैं, ऐसे लोगों को निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, उनको भी तार दिया, उनका भी उद्धार किया। ऐसे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। हमारी ऐसी इच्छा है कि कम से कम इस मंत्र को सभी लोग, इसके अर्थ को और इस प्रणाम मंत्र को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इन प्रणामों के द्वारा हम लोग प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान के भक्तों को। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। जब कोई प्रार्थना अर्पण करता है तो वो ये जान लेता है कि उसकी स्थिति प्रार्थना अर्पण करने वाले से बहुत कम है, और ऐसी अवस्था में अपने को रख कर वो प्रार्थना करता है। प्रार्थनाओं के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक प्रार्थना होती है लालसामयी प्रार्थना, जिसमें लालसा की जाती है, कुछ इच्छा की जाती है कि मुझे इस जगत से बाहर कीजिए, मुझे प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए इत्यादि, जैसे आचार्यों ने की है, नरोत्तमदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि। और कई प्रार्थनाएं होती हैं जो भगवान का गुणगान होती हैं। तो इसलिए इन प्रार्थनाओं को करने से जब हम भक्तों की वाणी को दोहराते हैं या भक्तों का गुणगान करते हैं, तब हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है भक्तों का गुणगान करना, भक्तों की सेवा करना और भक्तों के आश्रय में रहकर भक्ति मार्ग का पालन करना। अगर इतना हम लोग कर लें तो ये जान लीजिए कि कृष्ण बाध्य हो जाएंगे हमें भक्ति प्रदान करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए। वैसे तो कृष्ण को कोई बाध्य नहीं कर सकता, कृष्ण आत्मा राम है, पूर्ण स्वतंत्र है। कि महाभारत जिसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं, इसकी रचना ही हुई है केवल कृष्ण का गुणगान करने के लिए। इनकी शुरुआत की कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे जब सारे वेदों से भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को एक तरफ रखा गया तुलाभार में, और दूसरी तरफ महाभारत से भगवान के गुणगान को लेकर रखा गया तो महाभारत भारी हो गया। इसका अर्थ ये है कि महाभारत में भगवान कृष्ण का गुणगान बड़े विस्तार से हुआ है। दरअसल इसकी रचना ही इसीलिए हुई है। हम लोग केवल महाभारत को जानते हैं कि एक युद्ध हुआ कौरवों का, महाभारत का ध्यान आते ही हमें दुर्योधन, पांडव और भीष्म इत्यादि याद आते हैं। लेकिन अगर बड़े ध्यान से महाभारत का अध्ययन किया जाए तो ये केवल कृष्ण का गुणगान है, कृष्ण भक्ति और कृष्ण। और विशेष करके आज का जो हम लोग प्रसंग चर्चा करने वाले हैं, इस सारे प्रसंग की रचना ही इसीलिए हुई कि सारे ब्रह्मांड में कृष्ण की श्रेष्ठता को स्थापित किया जा सके, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इस चीज को स्थापित किया जा सके। इसीलिए सारे इस प्रसंग को रचा गया, विशेष करके महाभारत को। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं महाभारत में, सुन चुके हैं कि किस प्रकार राजसूय यज्ञ करने की इच्छा युधिष्ठिर महाराज के हृदय में हुई, और फिर कृष्ण ने उनको समझाया कि राजसूय यज्ञ वैसे कोई साधारण यज्ञ नहीं है। राजा को, सारे राजाओं को परास्त करना होता है, अपने अधीन रखना होता है, और इस यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा है जरासंध। तो इसीलिए जरासंध को मारना चाहिए। पहले तो युधिष्ठिर महाराज तैयार नहीं हुए, बड़े चिंतित थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम राजसूय यज्ञ नहीं करेंगे। लेकिन जब कृष्ण ने उनको जरासंध की जन्म की कथा सुनाई और कहा कि आप चिंता नहीं करिए, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो मैं, अर्जुन और भीम जाएंगे जरासंध को मारने के लिए। और जब ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने सुना तो स्वाभाविक है कृष्ण के प्रति उनका इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है कि उन्होंने पूर्ण हृदय से अर्जुन, भीम और कृष्ण को अनुमति दी कि आप जाइए और जरासंध का वध कीजिए। तो पिछली बार हम लोग सुन रहे थे कि कैसे जरासंध के महल में, जरासंध के राज्य में तीनों ने ब्राह्मणों के रूप में प्रवेश किया, सीधे सीधे द्वार से नहीं गए। जहां भी गए, बाजार में गए तो माला छीन कर अपने गले में डाल ली, चंदन लगा लिया और जो पर्वत की चोटी थी उसको तोड़ दिया, अर्थात एक प्रकार का विरोध प्रकट किया। और फिर महल में घुस गए। जब जरासंध ने देखा, क्योंकि वो ब्राह्मणों का बहुत आदर सम्मान करता था, ये उसकी शक्ति थी। जरासंध को भगवान ने हराया इसलिए नहीं था युद्ध में, क्योंकि जब भी वो आता तो अपने साथ में, अपने आगे आगे ब्राह्मणों को लेकर चलता था। तो जरासंध, इसकी शक्ति थी ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का आदर सम्मान, बहुत आदर करता था, प्रसिद्ध था ब्राह्मणों के आदर के लिए। तो जैसे ही ये तीन ब्राह्मण उसके महल में प्रवेश करते हैं, जरासंध अपने राज सिंहासन से उठ जाता है, उनकी आवभगत करता है, उनका आदर सम्मान करता है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते। वो उनकी पूजा अर्चना करना चाहता है, स्वीकार नहीं करते। और कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों ने मौन व्रत लिया है, रात को 12 बजे ये आपसे बात करेंगे। और जरासंध इतना आदर सम्मान करता था ब्राह्मणों का कि रात को 12 बजे गया मिलने के लिए, हाथ जोड़कर पूछने लगा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता। देखिए, हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता जहां जरासंध जैसे असुर भी इन बातों का पालन करते थे, नियमों का पालन करते थे। श्रीमद् भागवत में चार वर्णों का वर्णन किया गया है, जहां ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों के लिए नियम दिए गए हैं। ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वैश्यों में क्या होने चाहिए, क्षत्रियों में क्या होने चाहिए और शूद्रों में क्या गुण होने चाहिए। अगर आप भागवत पढ़ेंगे और शूद्रों के इन गुणों को आप पढ़ेंगे जो भागवत में दिए गए हैं, तो हम सबको अपने ऊपर शर्म आएगी, क्योंकि हम लोग शूद्रों के लिए जो नियम शास्त्रों में दिए हैं, भागवत में दिए हैं, उनका भी पालन नहीं कर सकते। और फिर हम लोग अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं, धागा डालकर हम लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन अगर भागवत पढ़ लें और जो उसमें शूद्रों के लिए नियम दिए गए हैं उसको पढ़ लें, तो फिर हम लोग शायद ये धागा भी पहनने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। तो इसलिए जरासंध जैसा असुर भी उस समय पर नियमों का पालन करता था, सभ्यता का पालन करता था। सभ्यता ये एक ऐसा वातावरण होता है जो हमें हमारा प्रमुख कार्य करने में मदद करता है, इसको सभ्यता कहते हैं। इसको जानना चाहिए, सभ्यता क्यों आवश्यक है ये जानना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं भक्ति आवश्यक है, भगवान का नाम लेना आवश्यक है। हाँ, वो हमारा भक्ति मार्ग में भी वो हमारा मुख्य कार्य है, भगवान के नाम को लेना, भक्तों का संग करना, भागवत पढ़ना, अर्च विग्रह की सेवा करना, ये हमारे मुख्य कार्य हैं। लेकिन इसको सहयोग देने के लिए जो कार्य बनते हैं उसको सभ्यता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जब दूध से दही बनाया जाता है तो उसके लिए एक प्रकार का वातावरण लगता है, एक बैक्टीरिया होता है जो अपने आप को बढ़ाता है, लेकिन वो बैक्टीरिया बढ़ा पाता है एक विशेष प्रकार के वातावरण में। बहुत ज्यादा गर्म हो तो भी आपकी दही नहीं जमेगी, बहुत ज्यादा ठंडा हो तो भी दही नहीं जमेगी, उसके लिए एक वातावरण चाहिए। और उस वातावरण में वो जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत जल्दी अपने आप को बढ़ाता है और दही जम जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे दूध से दही कैसे जमती है, कभी माइक्रोस्कोप लेकर देखा नहीं है, अगर देख लें तो दही खाना बंद कर देंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, तो वो बढ़ा सकते हैं एक विशेष वातावरण में। तो मुख्य कार्य है बैक्टीरिया का बढ़ना, लेकिन वो बढ़ता है जब वातावरण ठीक होता है, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति करने के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए। अगर वो वातावरण नहीं है, या जो सभ्यता कहनी चाहिए वो नहीं है, तब फिर बड़ा कठिन हो जाएगा हम सबके लिए भक्ति मार्ग का पालन करना। जैसे जब लोग अपने अपने नियमों का पालन करते थे तो उसको एक सभ्यता कहते थे। सभ्यता अर्थात सभ्यता जो सपोर्ट करती है, जो सहयोग करती है हमारे मुख्य कार्यों में। तो देखिए कैसी सभ्यता थी उस समय कि असुर जरासंध, जिसने बहुत सारे राज्यों को, राजाओं को हराकर बंदी बनाया था और उनको मारने वाला था, शिवजी को अर्पण करने वाला था, बलि चढ़ाने वाला था, कितने राजाओं को पकड़ लिया था उसने, 84, 85 और 86 राजाओं को पकड़ा था, 14 बाकी थे। तो सोच रहा था कि बस इतने आ जाए तो सबके सर काट के एक साथ शिव जी को चढ़ाऊंगा। तो कितना क्रूर व्यक्ति था ऐसे विचार करना। लेकिन फिर भी ऐसी क्रूरता के होते हुए भी, क्योंकि ऐसी सभ्यता थी चारों ओर, वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करता था। हाँ, दूसरी दृष्टि से हमें यह भी देखना चाहिए कि भले ही वो ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था, बहुत सम्मान करता था, सभ्यता का पालन करता था, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाया। एक समय ऐसा कहा जाता है एक तरफ कि कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं अगर कोई ब्राह्मणों का आदर सम्मान करता है क्योंकि कृष्ण उनका पालन करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कृष्ण कौन है? जो गायों का और ब्राह्मणों का हित चाहते हैं, रक्षा करते हैं। तो जो उनका पालन करता है, जो उनकी रक्षा करता है, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जरासंध तो ऐसा ही करता था, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाया क्योंकि उसका मनोभाव ठीक नहीं था, मनोवृत्ति ठीक नहीं थी। भले ही वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को बहुत आदर सम्मान करता था, लेकिन उसका भाव गलत था, इसलिए कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाया। कृष्ण भक्ति में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक, हम किस भाव में नियमों का पालन कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, क्या ये चीजें कृष्ण को प्रसन्न करती हैं या नहीं, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। जैसे जब कृष्ण कंस को मारने गए तो चाणूर और मुष्टिक से उनका युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। बहुत ही शक्तिशाली थे चाणूर और मुष्टिक, और ये दोनों जब युद्ध कर रहे थे कृष्ण और बलराम से, तो अपने पूरे शक्ति से प्रहार कर रहे थे कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण को बड़ा आनंद आ रहा था। आचार्य वर्णन करते हैं कि कृष्ण को ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके शरीर में थोड़ी सी खुजली कर रहा हो, या कोई फूल डाल रहा हो, कोई फूल दे फेंक रहा हो। अर्थात कृष्ण को कोई चोट नहीं लग रही थी, कृष्ण को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, कृष्ण बड़े आराम से आनंद ले रहे थे। तो उन्होंने जो कार्य किया उससे कृष्ण प्रसन्न हुए। और हम लोग कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो क्या चाणूर और मुष्टिक ने भक्ति नहीं की? अपने कार्यों से कृष्ण को प्रसन्न किया। हम सब जो कार्य करते हैं उसका उद्देश्य होता है कृष्ण को प्रसन्न करना। अभी कुछ भक्त बैठकर हार बना रहे हैं, कुछ कल भगवान की ड्रेसिंग करेंगे, कोई भोग बनाएंगे, कोई मंदिर साफ करेंगे, कोई प्रचार करेंगे, कोई ग्रंथ वितरण करेंगे इत्यादि, जो भी और भी बहुत सारी अन्य सेवाएं। लेकिन इन सारों का उद्देश्य हमारा क्या होता है? कृष्ण की प्रसन्नता। और यहां चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण को बड़ा प्रसन्न किया, लेकिन फिर भी उनको भक्त नहीं माना जाता, उनके कार्यों को भक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि उनका भाव अनुकूल नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? जहां हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य तो करते हैं लेकिन अनुकूल भाव में। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। तो इसलिए ये दोनों चीजें बड़ी आवश्यक हैं, सही भाव और कृष्ण की प्रसन्नता। अगर आपका भाव बहुत अच्छा है लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो भी ये भक्ति नहीं है। अगर कृष्ण प्रसन्न है लेकिन भाव ठीक नहीं है तो भी भक्ति नहीं है। इसलिए दोनों दृष्टि होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां जरासंध जिस सभ्यता का पालन कर रहा था, जिसमें वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर सम्मान करता था, लेकिन क्योंकि उसका भाव सही नहीं था इसलिए उसको भक्ति नहीं मानी गई, कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए, कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाया। तो रात्रि के समय 12 बजे करीब वो आया, सभ्यता का पालन करते हुए। हम लोग सभ्यता की चर्चा कर रहे थे तो किस प्रकार भक्तों को अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति में आते हैं, भक्ति में बड़ी सेवा करते हैं भगवान की, लेकिन सेवा करते करते हम मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। मूल उद्देश्य है हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का उदय। आज जिस भक्ति को हम बाहरी रूप से कर रहे हैं, या कहना चाहिए कभी कभी जबरदस्ती कर रहे हैं, अगर 16 माला किया नहीं तो कोई पूछेगा, कोई कहेगा कि अरे क्या हुआ, 16 माला क्यों नहीं किया, नियमों का पालन कड़ाई से करने का प्रयास करते हैं, बाहर खाते इसलिए नहीं है कि कोई देख लेगा, इसलिए नहीं खाते कि अरे वो बाहर बना है भगवान को भगवान को अर्पित किया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं खाते कि कोई देख लेगा, कोई क्या कहेगा, अर्थात हृदय में अभी वो भक्ति उदय नहीं हुई है, ये बाहरी है। तो काफी समय तक भक्ति करने से करने पर भी क्यों कृष्ण के भक्ति, कृष्ण का प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं होता, इसका कारण हम अपने आसपास का वातावरण, अपनी सभ्यता, इसको सही नहीं करते। तो हमें जो चीजें सहयोग करें हमारी भक्ति में, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। कृष्ण भक्तों को अपने आसपास के उस सारे वातावरण को त्याग देना चाहिए, भले ही कितना ही कष्ट क्यों ना हो, जो वातावरण हमें भक्ति के विरुद्ध ले जाता है, जो वातावरण हमें भक्ति से दूर ले जाता है, कृष्ण से दूर ले जाता है। तो हमारी सारी सेवा, हमारा जप, हमारा तप, हमारी विद्या, ये सब का उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण की ओर जाएं। बहुत ज्यादा शक्ति कोई पा सकता है, दधीचि मुनि इनके बहुत शक्ति आ गई थी शरीर में, देवताओं ने प्रश्न किया भगवान से कि अरे इनके अंदर ऐसा क्या है। जब देवता गए, बड़ी बुरी तरह हार रहे थे वृत्रासुर से, और देवता गए भगवान के पास मदद मांगने के लिए, तो उन्होंने प्रश्न किया, जब भगवान ने कहा जाओ दधीची से हड्डियां ले लो उसकी और एक वज्र बनाओ, तो क्या है इसके अंदर, क्या बल है? तो भगवान ने कहा इसके अंदर विद्या, व्रत और तप का बल है। ये तीन चीजें भगवान बताते हैं। इनके पास विद्या है, ब्रह्म विद्या, इन्होंने कड़ाई से व्रतों का पालन किया है, और तपस्या है। तो यही चीजें हैं, अगर हम अपने भक्ति के जीवन में अपनाएं, विद्या अर्थात भागवत से, श्रीमद् भगवत गीता से, अन्य शास्त्रों से श्रवण, अगर हम इसको करें, श्रवण से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता भागवत ये विद्या देती है। और व्रत, व्रत अर्थात इस कलयुग में बहुत कठिन है व्रतों का पालन करना, लेकिन कुछ ऐसे व्रतों को हम लें जो आचार्यों ने बतलाए हैं, जैसे हम चार नियमों का पालन करते हैं, ये व्रत है हमारे लिए। हम अन्य चीजों का भी भक्ति मार्ग में पालन करते हैं, एक व्रत लेते हैं कि हम इस नियम का पालन करेंगे। और फिर तपस्या, इस कलयुग में तपस्या क्या है, जो व्रत आपने लिए हैं उनका पालन करना, उनको बनाए रखना सबसे बड़ी तपस्या है। व्रतों को लेना कोई तपस्या नहीं है। हम लोग कभी कभी उत्साह में आते हैं, भावनाओं में आते हैं, कह देते हैं कल से हर रोज मंदिर आऊंगा, कल से हर रोज दर्शनार्थी आऊंगा। बहुत ज्यादा जप के विषय में सुन लेते हैं कि जप का कितना महत्व है, कल से 20 माला 25 माला जप करूंगा, ये व्रत लेना है। लेकिन जब उसका पालन करने जाते हैं वो तपस्या कहलाती है, क्योंकि वो हो नहीं पाता, बहुत सारे विरोध होते हैं। तो इसे बार बार श्रवण करना चाहिए, जप के महत्व को सुनना चाहिए। क्या है जप? जप उस अग्नि के समान है। जब हम लोग कुछ भोजन पकाते हैं तो बाहर अग्नि जलती है, जो बर्तन होता है उस बर्तन को कुछ नहीं होता, वो जलकर राख नहीं हो जाता, थोड़ा गर्म होता है बस, लेकिन अंदर जो धान्य होता है वो पक जाता है, वो भी जलता नहीं, वो पक जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा करेंगे तो जल जाएगा, ज्यादा करने का अर्थ अगर ठीक से नहीं करेंगे तो। तो इसी तरह ये जप है, ये अग्नि के समान है, जो बाहर शरीर पर तो ज्यादा कार्य नहीं करता, लेकिन अंदर जो असली चीज है आत्मा, उसको शुद्ध करता है। और उसको जैसे अग्नि कच्चे धान्य को पकाकर खाने योग्य बनाती है, इसी तरह जप ये ऐसी अग्नि के समान है जो हमारी ढकी हुई चेतना को, दूषित चेतना को शुद्ध करके कृष्ण को स्वीकार करने की योग्य बनाती है, इसलिए जप महत्वपूर्ण है। तो खैर, जब हम लोग जप के विषय में सुनते हैं, जप की चर्चा करते हैं, तो व्रत ले लेते हैं, लेकिन तपस्या नहीं कर पाते। तो इसीलिए एक ऐसा वातावरण होना चाहिए भक्ति के जीवन में, भक्तों के जीवन में, जहां हम श्रीमद् भागवत, भगवद गीता का बड़े ध्यान से श्रवण कर सकें, जब हम श्रवण करें तो हमें और कोई चीज याद नहीं हो, क्योंकि जो व्यक्ति बड़े ध्यान से श्रवण करता है उसकी चेतना पर बहुत असर पड़ता है। हो सकता है हम लोग बड़े बड़े श्लोक याद नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है हम लोग शास्त्रों की बहुत बड़े बड़े दर्शन को समझ नहीं पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ध्यान से श्रवण करें भगवद गीता भागवत को, तो आत्मा उन चीजों को ज्ञान लेती है, उन चीजों में आनंद लेती है, और फिर हम लोग कृष्ण की ओर बड़ी आसानी से बढ़ सकते हैं। अन्यथा कृष्ण की ओर जाना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कष्टदायक हो जाता है। तो इसीलिए सभ्यता चाहिए। तो कैसा वातावरण होना चाहिए? भक्तों के बीच में बड़ा प्रेम का, सहयोग का, आनंद का वातावरण होना चाहिए। जब एक भक्त दूसरे से मिले तो उसे इतना आनंद होना चाहिए हृदय में कि उस आनंद से, भक्त को देखने के आनंद से उसका कृष्ण का स्मरण बढ़ना चाहिए। ऐसा वातावरण। जब माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु से मिले, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है उनके भेंट का। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, कभी देखा नहीं था, न माधवेंद्रपुरी ने देखा था नित्यानंद प्रभु को, ना नित्यानंद प्रभु ने देखा था माधवेंद्रपुरी को। और जब दोनों सामने आए, माधवेंद्रपुरी अपने कुछ शिष्यों के साथ थे और नित्यानंद प्रभु सामने से आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन क्योंकि दोनों के हृदय में इतनी भक्ति थी तो अचानक दोनों देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और उस प्रसन्नता से हृदय में दोनों जान गए कि ये कौन है। देखिए, ये भक्ति है, ये वातावरण, ये सभ्यता है कि केवल भक्त को देखा और हृदय में आनंद, और वो जान गए कि ये कोई महान भक्त है, और फिर दोनों भाव विभोर हो गए, आंखों से आंसू आ गए, दोनों ने गले लगाया एक दूसरे को, फिर मोचित हो गए। और जो उनके शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या भाव है, ये कौन है। इतना तो जान रहे थे कि ये कोई महान भक्त है, लेकिन कौन है जो हमारे गुरु माधवेंद्रपुरी को इतने भाव विभोर कर सकते हैं। ऐसे ही जब ईश्वरपुरी, वो जब आए पहली बार नवद्वीप में, शांतिपुर में, बड़े आराम से बैठ गए मंदिर में किनारे पर, कोने पर, अद्वैत आचार्य सेवा कर रहे थे भगवान की, उन्होंने देखा और देखते ही वो जान गए कि ये कोई महान भक्त हैं। उनकी सेवा करते करते उनका ध्यान उनकी ओर जा रहा था। वैसे कहा जाता है कि जब भगवान की सेवा हो तो बड़े ध्यान से करना चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा, लेकिन यहाँ आचार्य, अद्वैत आचार्य वो देख रहे थे ईश्वरपुरी को, बार बार ध्यान उधर जा रहा था। श्रील प्रभुपाद भक्तों के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई मंदिर में भक्त आ जाए, आप अकेले हो मंदिर में, पुजारी हो, पूजा कर रहे हो, आप भगवान की आरती कर रहे हो अंदर ऑल्टर में, और उस समय कोई अतिथि आ जाए, कोई भक्त आ जाए मंदिर में, कोई नहीं हो उनका स्वागत करने वाला, तो पुजारी को आरती करना बंद कर देना चाहिए और बाहर आकर पहले स्वागत करना चाहिए। देखिए भक्तों का महत्व श्रील प्रभुपाद ने समझाया, कहते हैं इतना महत्व है भक्तों का। तो अद्वैत आचार्य देख रहे थे, उन्होंने पूछा कौन है आप। ईश्वरपुरी बड़े नम्र थे, उन्होंने कहा मैं तो तुच्छ जीव हूं, बड़ा पतित शूद्र हूं। अद्वैत आचार्य को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके हृदय में जो आनंद हो रहा था, जो प्रसन्नता हो रही थी केवल भक्त को देखने से, कि भक्तों का महत्व होता है। भले ही वो भक्त बहुत बड़े बड़े प्रवचन नहीं दे, भले ही वो भक्त बहुत सुंदर गाय नहीं, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति है तो उसको देखते ही आनंद होता है दूसरे भक्त को। अर्थात अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो हमें भक्त को देखकर आनंद होगा। तो फिर जब ईश्वरपुरी ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, तो फिर भागवत से श्लोक कहे गए, और जैसे ही भागवत के श्लोकों को सुना वो भाव विभोर हो गए, रह नहीं सके। और तब जब उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया, लोगों ने कहा ये ईश्वरपुरी है, ऐसे भाव और कोई प्रकट नहीं कर सकता। तो ऐसी सभ्यता जहां हम भक्तों को देखकर प्रसन्न हो, आनंद में हो। वैसे वैष्णव अपराधों में एक अपराध ये कहा जाता है कि अगर कोई भक्तों को देखकर प्रसन्न नहीं होता तो ये वैष्णव अपराध है। अगर कोई भक्त को आते देखकर उठकर खड़ा नहीं होता उसके आदर सम्मान में तो ये वैष्णव अपराध है। तो देखिए, अगर भक्तों को देखकर हम प्रसन्न ना हो तो हम अपराध कर रहे हैं। तो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी सभ्यता होनी चाहिए हम सबके बीच में कि जहां हम एक भक्त दूसरे को देखकर बड़ा आनंद में आए। ऐसा नहीं कि केवल जब कोई बहुत बड़े वरिष्ठ भक्त, वरिष्ठ सन्यासी आए तब हम बड़े आनंद में हों, लेकिन हर एक को देखकर आनंद। कृष्ण प्रेम की शुरुआत जीव प्रेम से होती है। जब हम जीवों को प्रेम करना सीखेंगे तब हम कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं। जीवों को प्रेम कैसे किया जाता है? उनके हृदय में कृष्ण के अंश को देखकर। जीवों से प्रेम उनके धन से नहीं होता, जीवों के प्रेम उनकी स्थिति से नहीं होता। असली प्रेम, हाँ, थोड़ा बहुत आकर्षण हो सकता है। कोई व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध है तो थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है, किसी के पास बहुत धन है तो थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है, लेकिन वो प्रेम नहीं है। जीवों से असली प्रेम होता है जब विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। जब सब में हम भगवान का अंश देखते हैं, और क्योंकि उनमें भगवान का अंश है इसलिए उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए कृष्ण से प्रेम बढ़ता है। ये विज्ञान है। हमारे इस भौतिक जगत का विज्ञान स्थूल रूप से कार्य करता है, बाहरी रूप से। किसी चीज को किसी में मिलाइए तो फिर वो हो जाता है, लेकिन कृष्ण भक्ति का विज्ञान ये सूक्ष्म है। वैसे कई चीजें सूक्ष्म हैं इस जगत में जिनको हम जान नहीं पाते। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने अपनी दादी से पूछा, उसने सुना था कि कोई बहुत बड़ा जादूगर आया है गांव में या शहर में, तो उसने पूछा जादू क्या होता है, कहां से आता है। छोटी सी बच्ची थी, उसने प्रश्न किया तो उसकी जो दादी थी उसने बहुत सुंदर उत्तर दिए। कई सारे उत्तर हैं, उसमें से एक उत्तर उसने दिया। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराई, और जब वो मुस्कुराई तो छोटी बच्ची थी वो भी मुस्कुरा दी। तो उसने पूछा हम क्या कर रहे हैं, उसने कहा मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा देखो ये जादू है, एक व्यक्ति मुस्कुराता है उसको देखकर सामने वाला मुस्कुराने लगता है, ये जादू है, सूक्ष्म रूप का जादू। ऐसे कई उन्होंने उदाहरण दिए, बहुत सुंदर वो कथा है, बहुत सुंदर मतलब वर्णन उस कहानी में किया गया है कि किस तरह उन्होंने अलग अलग उदाहरणों से प्रकृति के ये दिखलाया कि जिस चीज को हम जादू या चमत्कार कहते हैं चल रहा है हमारे जीवन में, हम लोग रोज इसको देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो ये सूक्ष्म विज्ञान भक्ति का है कि जब हम एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, जब आप किसी को देखकर प्रसन्न होंगे स्वतः उस व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति प्रसन्नता आएगी। बहुत बार वो कथा सुनाई जाती है कि एक राजा एक समय जा रहे थे और एक व्यक्ति वहां पर था व्यापारी, उसको देखकर राजा के हृदय में एक भावना आई कि इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे, इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है मेरे प्रति, लेकिन मुझे इसको देखकर ऐसा मन में विचार आ रहा है कि इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो मंत्री ने कहा मैं पता लगाता हूं। अगले दिन उसने राजा से बतलाया कि ठीक है फिर से जाएंगे घूमने। राजा फिर से गए घूमने और वही व्यक्ति वही व्यापारी सामने था, लेकिन आज जब राजा ने उस व्यापारी को देखा तो उसके मन में आया कि इसको बहुत बड़ा उपहार देना चाहिए। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल मेरे मन में इसको देखकर विचार आया था कि इसको मारना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए, और आज विचार आ रहा है कि इसको उपहार देने चाहिए। तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आया। मंत्री ने कहा कि दरअसल ये चंदन का व्यापारी है, कल जब आप जा रहे थे तो क्योंकि इसकी चंदन की लकड़ी आजकल बिक नहीं रही है, कोई ले नहीं रहा है, तो ये आपको देखकर सोच रहा था कि इस राजा की कब मृत्यु होगी तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी, क्योंकि राजा मरेगा तो चंदन की लकड़ी जलाई जाएगी, साधारण लकड़ी नहीं जलाएंगे। तो इसीलिए आपके मन में ये विचार आया कि इसको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो राजा ने कहा, लेकिन आज मेरे मन में ये विचार नहीं आया। तो उन्होंने कहा, हाँ, कल मैं गया था और मैंने इससे बात की और मैंने इससे कहा कि तुम चिंता नहीं करना, ये तुम्हारी सारी चंदन की लकड़ी हम खरीद लेंगे, राजा के लिए हम लोग इसको खरीद रहे हैं। तो क्योंकि इसको पता चला कि राजा ने सारी मेरी चंदन की लकड़ी खरीद ली है, तो आज वो बहुत धन्यवाद दे रहा था आपको हृदय से कि आपकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है, मेरा सारा कारोबार अच्छा हो गया, और इसीलिए आपके मन में उसको उपहार देने का ख्याल आया। तो देखिए, ये विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान। इसी तरह जब हम भक्तों को आपस में देखकर, एक दूसरे को देखकर आनंदित होते हैं, तो उन दोनों के आनंद को देखकर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अर्थात अगर एक दृष्टि से कहा जाए तो केवल भक्तों को देखकर हृदय में आनंद लाने से हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं, ये हमने केवल एक चीज पर अभी चर्चा की है, एक सभ्यता के लक्षण पर चर्चा की, कि अगर हम केवल भक्तों को देखकर प्रसन्न हो जाएं तो कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं, भक्तों का आदर सम्मान करें तो कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं। तो ऐसी सभ्यता को हम लोगों को पालन करना चाहिए। तो जरासंध ये रात को 12 बजे गए और उन्होंने पूछा कि आप मेरी जो मैं आपको अपनी पूजा अर्चना दे रहा हूं, स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, और हैं कौन आप लोग? तो फिर उस समय कृष्ण ने बतलाया कि मैं कृष्ण हूं और ये अर्जुन और ये भीम है। उससे पहले कृष्ण ने कहा था कि हम यहां पर एक शत्रु के रूप में आए हैं। जरासंध ने कहा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो जानता भी नहीं आपको। तो उन्होंने कहा कि भले ही तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इतने सारे राजाओं को कैद करके रखा है, उनको मारने वाले हो, इतने क्रूर हो तुम, तो क्या तुम्हें मारना नहीं चाहिए? आज हम तुमको मार कर जाएंगे, तुम्हारी हत्या करेंगे। तो जरासंध ने कहा, जब पता चला कि कृष्ण है, तो जरासंध ने कहा कि देखो, मैंने एक भी राजा ऐसा नहीं रखा जिसको हराया नहीं है, और आज मैं आप लोगों को भी हराऊंगा। और उसके बाद उसने अपने पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक किया, राज्य पर बिठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने कहा, हम तीनों में से किसी को चुन लो। जरासंध ने कहा, चाहे आप तीनों एक साथ आना चाहो तीनों एक साथ आओ, एक अकेले अकेले आना चाहो तो अकेले आओ। देखिए, जरासंध इस समय जानता था कि मेरी एक गलती मेरी मृत्यु का कारण बन सकती है ना। उसने कह दिया तीनों आ जाओ, और तीनों इतने शक्तिशाली थे, कोई साधारण नहीं थे। ऐसा नहीं था कि जरासंध था 10 फुट 5 इंच और भीम और अर्जुन होंगे कुछ 2 फुट 3 इंच, ऐसा नहीं था, तीनों बराबर थे, अब भीम खास करके। तो जब चुनना हुआ, कृष्ण ने कहा, तुम चुनो, हम एक से एक लड़ना चाहते, तुम चुनो, किसी से भी चुनो, चाहे मैं मुझे चुन लो, अर्जुन को चुन लो, भीम को चुन लो। तो देखिए, इस समय भी, ऐसे समय में जो उसकी जन्म और मृत्यु का सवाल था, जीवन और मृत्यु, या तो जीवित रहता या मर जाता, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं भीम से युद्ध करूंगा, क्योंकि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथों मरना अच्छा है। यानी जरासंध जानता था कि मेरी मृत्यु आ गई है, मैं मरने वाला। तो उसने कहा, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथों मरना बहुत अच्छा है। अर्थात अगर अर्जुन के हाथों मर जाता तो लोग कहते रहे, क्या अर्जुन ने मार दिया, अर्जुन तो इतना शक्तिशाली नहीं भीम के जितना, या कृष्ण से, कृष्ण छोटे हैं, अर्जुन भी छोटे हैं, लेकिन भीम बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसे समय में भी उसने नियम का पालन किया और कहा कि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति के हाथों मरना चाहता। तो फिर भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ, बहुत घमासान युद्ध हुआ। हमने वर्णन किया था कि कार्तिक के पहले दिन पर यह प्रारंभ हुआ था युद्ध, पहले ही दिन, कई दिनों तक चला, 13 दिन 14 दिन। फिर जरासंध का वध हो गया, जरासंध को मार दिया, और फिर जरासंध वध के बाद उसके पुत्र को, सहदेव उसका नाम था, उसको सिंहासन पर बिठाया, और उसके बाद कृष्ण वापस आए, राजसूय यज्ञ की तैयारियां हुई, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ करना था तो फिर कई राजाओं को निमंत्रण भेजे गए, बहुत जगहों से राजा आए, लेकिन उसके पहले उन राजाओं को जीता गया। चारों दिशाओं में चारों भाई गए। उत्तर की दिशा में गए अर्जुन, जितने भी राजा थे उन सबको जीतते हुए कई युद्ध हुए, और कई तो ऐसे कि 8-8 दिन तक लगातार युद्ध किया। और जब 8 दिन बाद भी अर्जुन थके नहीं, बिना रुके युद्ध करते रहे, तो फिर उस राजा ने समर्पण किया। उसने कहा बस अब मैं आपके सामने नहीं दिख सकता। तो उत्तर की दिशा में अर्जुन ने किया, और पूर्व की दिशा में भीम गए, पश्चिम की दिशा में नकुल और दक्षिण में सहदेव। तो चारों दिशाओं को जीत लिया। कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो उनको जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने ऐसे ही मित्रता कर ली, और कुछ लोगों के साथ युद्ध करना पड़ा। फिर जब राजसूय यज्ञ प्रारंभ करना था, अब ये जो प्रसंग है राजसूय यज्ञ का, ये केवल कृष्ण के गुणगान के लिए। युधिष्ठिर महाराज इतने महान भक्त हैं, तो क्या वो एक ऐसा कार्य करेंगे राजसूय यज्ञ जैसा, जिसमें कितने राजाओं को परास्त करना पड़ा, कितने सारे धन की आवश्यकता हुई, कितना धन लगा होगा, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी, क्या वो केवल अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए इतनी व्यवस्था करेंगे इतने महान भक्त होते हुए? नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने एक ही कारण से किया। उनका सारा धन, उनकी सारा यश, उनका सारा बल केवल कृष्ण के गुणगान के, ये उन्होंने इस राजसूय यज्ञ से दिखलाया। हमने पहले भी वर्णन किया है कि एक बार कृष्ण के पास गए थे युधिष्ठिर महाराज, कहने लगे कृष्ण मुझे बहुत धन चाहिए। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर महाराज आप तो भक्त हैं, आपको क्यों धन चाहिए? बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, ताकि सारा धन आपकी सेवा में लगा सकूं और लोगों को दिखला सकूं कि लोग कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ चला जाता है, नहीं बहुत धन आता है, लेकिन कब आता है? जब भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना सारा धन इस राजसूय यज्ञ में लगाया। तो सब राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, सारी पृथ्वी से राजा आए अलग अलग स्थानों से, और उन सबके रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई, और फिर सब लोगों को अलग अलग विभाग दिए गए। स्वयं नकुल और सहदेव गए थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र इत्यादि को बुलाने सब आए थे उसमें, इंद्रप्रस्थ में उस समय। तो अलग अलग लोगों को सेवाएं दी गई। दुशासन को सेवा मिली कि जो भी ब्राह्मण आए, जो भी लोग आए अतिथि, उनका स्वागत करना। किस तरह से? सॉरी, दुशासन को नहीं, अश्वत्थामा को मिली। दुशासन को सेवा मिली थी कि भोजन, सबको प्रसाद वसाद की व्यवस्था, फूड डिपार्टमेंट वो उनके पास था, ये सबके प्रसाद की व्यवस्था करना दुशासन ने किया था। अश्वत्थामा ब्राह्मणों को व्यवस्था कर रहे थे। द्रोणाचार्य और भीष्म, इनको सेवा दी थी कि आप पूरा व्यवस्था देखिए कि कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ हो गया नहीं हुआ, ये दोनों पूरी व्यवस्था देख रहे थे। कृपाचार्य को व्यवस्था दी गई थी कि जो भी रत्न इत्यादि आए हैं उनको संभाल कर रखना। विदुर को सेवा दी गई खर्चा करने की, जो भी खर्चा हो वो सब विदुर से लिया जाए, ताकि पता रहे संभाल दे, विदुर बड़े दक्ष हैं उन चीजों में, नीतियों में, तो विदुर को दिया गया। ऐसे सारे दुर्योधन को भी दिया गया विभाग, दुर्योधन को विभाग दिया गया कि जो भी गिफ्ट्स आए उनको संभाल कर रखना। लेकिन रखे थे दुर्योधन ने, कुछ ले नहीं गए थे वापस। तो और गिफ्ट्स भी ऐसे आ रहे थे, उपहार कोई साधारण उपहार नहीं थे, कोई एक ग्रीटिंग कार्ड लेकर नहीं आ रहे थे कि कंग्रेचुलेशन स्वामी और अश्व ने दिया गया या राजसूय यज्ञ, कोई नहीं ऐसे उपहार आ रहे थे, बड़े बड़े रत्न, हीरे, जवाहरात, धन, सोना, ये सब आ रहा था। तो ऐसे उनको सब दुर्योधन को कहा था आप संभाल कर रखो। अश्वत्थामा को भी किया गया, सबकी व्यवस्था कीजिए, देखने रहे। और कृष्ण ने सेवा ली कि जो भी ब्राह्मण इस यज्ञ में आएंगे उनके चरणों को मैं धोऊंगा, ये सेवा कृष्ण ने ली, स्वयं ली थी। तो देखिए ये शुरुआत है कृष्ण के गुणगान की इस राजसूय यज्ञ के प्रसंग में। आगे चलकर इतना गुणगान है इस राजसूय यज्ञ में भीष्म ने किया, द्रोणाचार्य ने किया, नारद मुनि ने किया, सहदेव ने किया, ये सब आएगा भी कृष्ण का गुणगान। और कैसा गुणगान? कोई साधारण गुणगान नहीं, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहकर इस यज्ञ में उनकी सत्ता को स्थापित किया गया। तो ये पहला इनके आचरण से इनका गुणगान भारत में, महाभारत में होता है कि ऐसी अवस्था में जहां कृष्ण सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सब जीव उनके अंश हैं, लेकिन वो कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा लेते हैं। और राजसूय यज्ञ में कोई एक दो ब्राह्मण नहीं आए थे, हजारों हजारों ब्राह्मण आए थे और सबका स्वागत हुआ। ये पद्धति है, चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोगों को सिखलाया है। हम अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि हमारे अभी कार्यक्रमों में जब स्वागत होता हो या हो, तो ऐसा होना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया। हर एक भक्त को जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने, बहुत सारे भक्त बंगाल से आया करते थे, तो जब वो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते तो स्वरूप दामोदर स्वयं जाते थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, वो जाते भक्तों का स्वागत करने के लिए। और कैसे स्वागत करते? हर एक भक्त के चंदन लगाया जाता, उनके गले में हार डाला जाता। राजा प्रताप रुद्र पहली बार जब देख रहे थे, वो अपने महल की छत से देख रहे थे कि बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, और देखा कि ये भक्त गए और ये स्वागत कर रहे हैं, हर एक के गले में माला डाली है, चंदन लगाया है, बड़े प्रेम से स्वागत। देखिए ये भी एक सभ्यता है, कैसा वातावरण हो जाता है। अगर केवल इतना ही किया जाए तो वातावरण कितना अच्छा हो जाता है, भक्त कितने प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको आतिथ्य किया जा रहा है, अर्थात उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको ऐसा लगने नहीं दिया जा रहा कि उनकी यहां आवश्यकता नहीं है। तो बहुत से भक्त आते थे लेकिन हरेक का स्वागत करते थे, हरेक के चंदन लगाना, हरेक को माला अर्पण करना। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर अपने एक भजन में लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, उसका वर्णन वो करते हैं, श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभिला प्रभु जग तेरा प्राण। तो इस भजन में वो कहते हैं कि हर एक भक्त के गले में माला होती थी, लेकिन जब कीर्तन करते थे तो पता नहीं चलता था उनको, तो मालाएं गिर जाया करती थी गले से निकलकर, छिंदिया पड़े गिया भक्त गाय। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, उनके गले की माला निकल जाती थी, टूट जाती थी, और फिर वो भक्तों के गले में गिर जाती थी। तो ऐसा ये स्वागत होना चाहिए। तो कृष्ण ने वो सिखलाया कि कैसे हर ब्राह्मण का जब वो आते तो उनके चरण धोते थे। तो ये कृष्ण का वात्सल्य रूप है, जहां कृष्ण अपना भक्त वत्सल रूप प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा इसलिए की क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में आना स्वीकार किया, क्योंकि ये ब्राह्मण एक भक्त की सेवा के लिए आए थे, क्योंकि ये ब्राह्मण एक भक्त का गुणगान करने के लिए आए थे, और इसीलिए कृष्ण ने उनकी सेवा की। कृष्ण भक्तों का उद्धार तो करते ही हैं, लेकिन पहले उनका उद्धार करते हैं जिन्होंने भक्तों की सेवा की, जिन्होंने भक्तों के चरणों का आश्रय लिया। ध्रुव महाराज जब वैकुंठ जा रहे थे तो उन्होंने प्रश्न किया, अरे मेरी माता का क्या होगा? दूतों ने दिखलाया, वो देखिए विमान, आपकी माता पहले ही चली गई। तो भक्त है ध्रुव महाराज, उनकी माता उतनी महान भक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज की सेवा की, क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज को मार्ग दिखलाया, इसलिए भगवान ने पहले उनका उद्धार किया। गजेंद्र की कथा में हम लोग देखते हैं, भगवान आए गजेंद्र को बचाने के लिए, लेकिन पहले उद्धार किया उस घड़ियाल का जिसने गजेंद्र के चरणों को पकड़ा हुआ था। गजेंद्र भक्त है, लेकिन उस घड़ियाल ने मदद की उस समय पर गजेंद्र को भगवान के स्मरण के लिए, और इसलिए भगवान ने पहले उनका उद्धार किया, पहले आकर उसको मारा, उसका उद्धार हुआ, फिर गजेंद्र का उद्धार। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन सारे ब्राह्मणों पर कृष्ण बड़े प्रसन्न थे कि कैसे इन ब्राह्मणों ने और पूरे ब्रह्मांड से ब्राह्मण आए थे, और साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बड़े महान भक्त। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के लिए आए, उनके आग्रह पर आए, तो इसलिए उन्होंने स्वागत किया, हरेक का पांव धोए। नारद मुनि ये कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि आप बड़े महान हैं, देखिए ब्रह्मांड से सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि आपको देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। और क्या देखने आए हैं वो सारे ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि क्या देखने आए हैं? अरे ये कौन भक्त है जिसकी स्वयं कृष्ण वहां खड़े होकर ऐसी सेवा कर रहे हैं? कौन है ये देखने आए? युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये मुझे देखने नहीं आए हैं, मैं जानता हूं कि ये कृष्ण को देखने आए हैं। नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, ये आपको देखने आए। तो इस तरह से कृष्ण का ये भक्त वात्सल्य, भक्तों के प्रति प्रेम, कि उन्होंने कैसी सेवा की, एकदम तुच्छ सेवा ली। वो चाहते तो बहुत बड़ी सेवा ले सकते थे, वो कहते कि मैं सारी व्यवस्था करूंगा, मैं सब देखूंगा, या मैं धन देखूंगा, या मैं ये देखूंगा, मैं महल बनवाऊंगा, कुछ भी दे सकते। उन्होंने सबसे छोटी सेवा, छोटी माने जाने वाली, वैसे वो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि उसके द्वारा सारे भक्तों की, उस कृष्ण को आवश्यकता नहीं है। तो इनके उदाहरण से भक्तों को सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए कि हमें कैसी सेवा करनी चाहिए। हमें भागना नहीं चाहिए, जहां हम सब माइक के सामने बैठना नहीं चाहिए व्यास आसन पर, हमें सेवा करनी चाहिए भगवान के पीछे किचन में, जहां पर बर्तन धोना, जहां कोई नहीं देखता। हमें सेवा करनी चाहिए भगवान के मंदिर साफ करने की। ऐसे कई भक्त हैं यहाँ भी इस मंदिर में, वो नियम से आते हैं, सुबह ऐसी कोई छोटी मोटी सेवा करते हैं, कोई जानते नहीं हम। तो ये आनंद है भक्ति का। तो इसलिए कृष्ण अपने उदाहरण से अपने भक्तों को ये सिखला रहे हैं कि हमें कैसी सेवा करनी चाहिए और कैसा भाव होना चाहिए। कृष्ण ने ऐसी सेवा को स्वीकार किया जो भौतिक दृष्टि से सबसे तुच्छ मानी जाती है, किसी के पांव धोना, चरण धोना, जब तक भक्तों का महत्व पता नहीं हो तब तक तो कोई नहीं धोएगा। बाहर की दुनिया में कहिए किसी को जाकर कि किसी के चरण धोए, या वो नहीं धोते हैं, वो तो अपने चरण भी नहीं धोते हैं ठीक से, तो दूसरों के क्या था। लेकिन कृष्ण ने इस उदाहरण को प्रस्तुत किया कि भक्तों को कैसा होना चाहिए। तो इसलिए हमको बड़ा नम्र होना चाहिए, सीखना चाहिए कृष्ण से, ऐसी सेवा करनी चाहिए जहां मान प्रतिष्ठा बहुत कम हो। ऐसा भक्त बहुत सुखी रह सकता, ऐसा भक्त भक्ति में प्रगति जल्दी करता, क्योंकि जहां मान प्रतिष्ठा का भाव आ जाता है कि मैं ये सेवा करूं ताकि मुझे मान प्रतिष्ठा मिले, लोग देखें मुझे, तो ऐसी सेवा का भाव अनुकूल नहीं रह जाता। इसीलिए हमने शुरुआत में बताया था भक्ति मतलब अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा, तो अनुकूल भाव नहीं रह जाता। लेकिन जहां हम ऐसी छोटी सेवाएं करते हैं तो वहां अनुकूल भाव होता है। कौन ऐसे होंगे जो अपने घर को सबको छोड़कर आकर यहां पर बर्तन साफ करेंगे? तो बर्तन साफ करते समय भाव, हाँ ये अलग बात है कि बर्तन साफ करते समय भी अहंकार आ जाता कि मेरे जैसा बर्तन और कोई साफ नहीं कर सकता, देखो कितना चमक रहा है, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है इसमें, ये अलग बात, भौतिक कलमश आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी सेवाएं इस भाव में नहीं होनी चाहिए, से हर सेवा, फिर अगर व्यक्ति को प्रतिष्ठा स्वीकार भी करनी पड़े, ऐश्वर्य स्वीकार भी करना पड़े, तो कृष्ण की सेवा के लिए अगर वो स्वीकार करता है तो फिर उसको मान सम्मान की भावना नहीं आएगी, फिर उसका भाव गलत नहीं। श्री प्रभुपाद, उन्होंने सब स्वीकारा, कितना बड़ा बड़ा ऐश्वर्य, भक्त उनके लिए बहुत बड़े बड़े व्यास आसन बनाते थे, बड़े ऐश्वर्यशाली व्यास आसन, गाड़ियां बड़ी बड़ी, प्रभुपाद ने सब स्वीकार किया। लेकिन उनका हृदय था वृंदावन में राधा दामोदर के, वो दो छोटे छोटे कमरे जिसमें कोई सुविधा नहीं है, और वहां पर आराम से बैठकर रूप गोस्वामी की समाधि को देखते हुए ग्रंथों को रचना करना, तो स्वीकार उन्होंने भी किया। और कभी एक बार प्रश्न भी हुआ था उनसे कि अरे आप साधु हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी कार्यों में घूमते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये गाड़ी क्या, मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं, मेरे लिए सोने की गाड़ी होनी चाहिए। ये अहंकार नहीं था प्रभुपाद का, ये कृष्ण के गुणगान था। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं इसलिए सोने की गाड़ी होनी चाहिए। कृष्ण का गुणगान था कि आप लोग कृष्ण की स्थिति को नहीं जान रहे इसलिए छोटी छोटी गाड़ियां ला रहे हैं, अगर आप जानेंगे कि कृष्ण कौन है तब आप सोने की गाड़ी लेकर आएंगे। तो प्रभुपाद ने सब स्वीकारा, लेकिन उनका हृदय पूर्ण रूप से विरक्त वैराग्य। तो ऐसी भावना में हम जब काम करते हैं, जब सेवा करते हैं, तब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अन्यथा हम लोग बहुत ज्यादा इस जगत में मेहनत करते रहेंगे सुख के लिए, भक्ति में मेहनत करते रहेंगे लेकिन सुख नहीं मिलेगा। हम लोग अपने दुखों में इस भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अभी कुछ समय पहले एक भक्त ने हमें एक मैसेज भेजा, उन्होंने बताया कि भौतिक जगत में सारे लोग एक नंबर के पीछे पागल हैं, और वो नंबर है 54321, ऐसा उन्होंने भेजा। सब लोग यही चाहते हैं, ये भौतिक प्रगति है इनके लिए। और 54321 क्या है वो बता रहे थे, उन्होंने लिखा 5 digit salary, अर्थात हमारी जो इनकम है, आय है, वो 5 digit में होनी चाहिए। 5 digit मतलब कितना हो गया मिनिमम, है 10,000, है ना, 10,000 ना, कि 50,000, 1,00,000, कितना होता है 5 digit, 3 digit, हाँ चलो जितना भी हो आप लोग समझ लीजिएगा। तो 5 digit salary और 4 पहियों वाली गाड़ी, 54, वो तो होना चाहिए ना। भी लोग बोले अभी बाजू वाले ने इंडिका खरीद ली, नैनो तो खरीद लू कम से कम सस्ती है। तो 5 digit की सैलरी हो गई, 4 व्हीलर होना चाहिए 4 से, 54 और 3 3 बेडरूम का घर कम से कम, तो 5, 4, 3 और 2, कम से कम 2 बच्चे, सो 2 और 1, ठीक है। तो ये भौतिक प्रगति का ये लक्षण है 5, 4, 3, 2, 1, बस ये हो गया तो मैं संतुष्ट। हाँ, यही हमारे सारी असंतुष्टि का बीज है 5, 4, 3, 2, 1। तो इन्हीं इच्छाओं के कारण जब हम ऐसी इच्छाएं रखते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, तो हम लोग इतने डूब जाते हैं ऐसी इच्छाओं में कि अपने असली लाभ को भी नहीं देख पाते। इसलिए इंग्लिश में कहावत है कि जब भी एक सुख का या मार्ग दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। लेकिन बस इतना ही है कि हम लोग बंद दरवाजे की ओर इतना देखते रहते हैं कि जो दूसरा दरवाजा खुला है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। कहावत है इंग्लिश, अर्थात हम बहुत ज्यादा शोक करते रहते हैं और आगे आने वाले अवसरों को देख नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते। तो यहां कृष्ण ने अपने उदाहरण से हम लोगों को सिखलाया है कि किस प्रकार हमें नम्र भाव में, बिना किसी मान सम्मान की इच्छा के, बिना किसी मान सम्मान की कामना के, केवल सेवा भाव में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। फिर वो चाहे कोई छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, कोई भी हो, भगवान के लिए एक समान। तो कृष्ण ने ये सेवा ली, जहां वो सब उन्होंने ब्राह्मणों के पांव धोए, उनका स्वागत किया और इस प्रकार फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। सारे राजा, बड़े बड़े महारथी वहां पर उपस्थित थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, युधिष्ठिर महाराज को यज्ञ की दीक्षा दी गई और फिर यज्ञ काफी समय चला और यज्ञ का अंतिम दिवस आया। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था और अब यज्ञ के अंतिम दिवस पर भीष्म ने बोलना प्रारंभ किया। और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि युधिष्ठिर अब यज्ञ समाप्त होने आया है और यज्ञ की अंतिम जो क्रिया है अर्घ्य प्रस्तुत करना सभी राजाओं को सभी बड़े बड़े लोगों को, तो इसीलिए अब तुम सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसको तुम सबसे पहले ये अर्घ्य या अग्र पूजा, जिसकी अग्र पूजा अर्थात सबसे पहले जिसकी पूजा तुम करना चाहते हो और फिर उसके बाद बाकी सारे राजाओं की। देखिए ये भी एक नियम था, क्यों पूजा की, क्यों अर्घ्य अर्पित किया, इसलिए कि वो धन्यवाद दे रहे थे कि आप आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, इसलिए उनकी पूजा की। आगे भी वर्णन है कि जब वो लोग गए तो कैसे युधिष्ठिर महाराज ने उनको विदा किया, आज शायद उसका वर्णन नहीं कर पाएंगे लेकिन वो भी बड़ा अच्छा तरीका। तो ये सारी सभ्यता हम लोग जो वर्णन कर रहे थे कि ये सभ्यता है और ये सभ्यता हमें मदद करेगी कृष्ण की ओर आकर्षित होने पर। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमारा जो हृदय, प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा हृदय, दरअसल उनके गुरुओं ने उनसे कहा था कि तुम विष्णु का ध्यान मत करो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरा हृदय उस लोहे के समान है जो स्वाभाविकता चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो अपने आप जा रहा है कृष्ण की ओर। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए भक्ति में कि हमारा हृदय स्वतः कृष्ण की ओर जाए, हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़े। लेकिन हमारा हृदय स्वतः कृष्ण की ओर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसमें जंग लगा हुआ है, तो इस थोड़े से जंग को हटाना और बस फिर कृष्ण अपने आप हमारे हृदय में प्रकट होंगे, हमारा हृदय उनकी ओर आकर्षित होगा। तो अब भीष्म ने कहा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसको तुम अग्र पूजा अर्घ्य सबसे पहले अर्पित करो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप ही बताइए मैं किसको चुनूं, आप श्रेष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप मेरे। तो भीष्म ने कहा कि सबसे पहले अर्घ्य या अग्र पूजा करने के लिए कई प्रकार के व्यक्तियों को चुना जा सकता है, या तो वो आचार्य हों, या वो यज्ञ कराने वाले हों, या वो राजा हों, आपके संबंधी हों, या फिर मित्र हों, इनमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा आप बताइए, और फिर अब भीष्म को अवसर मिला और भीष्म ने कहा कि यहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल श्री कृष्ण हैं जिनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। और उन्होंने उस समय बहुत ही सुंदर एक श्लोक कहा, वो कहते हैं एष हि एष संस्थानां तेज बल पराक्रमः मध्य तपन्नि भाति ज्योतिषामिव भास्करः। वो कहते हैं कि जैसे सभी चमकने वाली चीजों में सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा होता है, अर्थात चमकते तो बहुत लोग हैं, बहुत चीजें हैं, जुगनू भी चमकता है, एक छोटी सी हमारी टॉर्च भी चमकती है, वैसे चमकने वाली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सूर्य के सामने इन सब का प्रकाश कोई कार्य नहीं करता। तो वो कहने लगे कि तेज बलो पराक्रमः, तेज में, बल में, पराक्रम में यहां ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण के समान हो। कृष्ण उस सूर्य के समान है जो जिनके सामने सबका तेज, सबका बल, सबका पराक्रम फीका पड़ जाता है। और फिर वो कहते हैं कि कृष्ण उस सूर्य के समान है, जब किसी स्थान में सूर्य नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश से या सूर्य की उपस्थिति से जो प्रभाव फैलता है वो कृष्ण की उपस्थिति से फैल रहा है, या फिर ऐसी जगह पे जहां वायु नहीं होती और वायु आने से जो प्रभाव फैलता है वो कृष्ण की उपस्थिति से फैल रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में वो कह रहे थे कि जहां सूर्य ना हो वहां अंधकार होता है और सूर्य के आने से प्रकाश फैल जाता है, जहां कृष्ण नहीं है वहां केवल अंधकार है, अज्ञान है, तमस है, लेकिन जहां कृष्ण आ जाते हैं वहां ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। तो इस चीज को दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, देखिए कितना सुंदर वर्णन वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और वायु वायु का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि जहां वायु नहीं है वहां क्या है? वहां मृत्यु है। हम जीवित नहीं रह सकते वायु के बिना, वायु चाहिए। जब हनुमान जी की कथा में हम लोग सुनते हैं कि इंद्र ने वार किया हनुमान पर, तो वायु ने क्रोध में आकर अपनी सारी शक्ति को खींच लिया और सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, देवताओं में हाहाकार मच गया, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तो इसलिए जहां वायु नहीं है वहां जीवन नहीं है, जहां कृष्ण नहीं है वहां जीवन नहीं है। नारद मुनि आगे वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर नारद मुनि का भी वर्णन है। वो कहते हैं कि हम उसको पढ़ते हैं, वैसे बाद में हम पढ़ने वाले थे लेकिन समय कम है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। नारद मुनि कहते हैं, कृष्ण नाम कमल पत्राक्षम न अर्चिष्यन्ति ये नरः, जीवन विताशुते ज्ञेया न संभाष्य कदाचन। जब भीष्म ने गुणगान कर लिया, सहदेव ने प्रारंभ किया, तो उस समय नारद मुनि ने गुणगान किया जब विरोध हो रहा था। थोड़ा यह आगे का समय था लेकिन श्लोक महत्वपूर्ण है इसलिए हमने इसको अभी कहा। नारद मुनि कहते हैं, कृष्णम कमल पत्राक्षम, जो कृष्ण हैं जिनके नयन कमल के समान हैं, न अर्चिष्यन्ति ये नरः, जो मनुष्य कृष्ण की पूजा अर्चना नहीं करते। देखिए महाभारत इतना स्पष्टतः कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। नारद मुनि ने कोई और नाम नहीं लिया, नारद मुनि ने घुमा फिरा के नहीं कहा, नारद मुनि ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो लोग कृष्ण की अर्चना नहीं करते, वो कृष्ण जिनके नयन कमल के समान हैं, जीवन मृतस्ते तु गेया, उनको क्या गे, उनको क्या जानना चाहिए कि जीवित रहते हुए भी मृत के समान है, मरे हुए व्यक्ति हैं जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते। और आगे कहते हैं नारद मुनि, न संभाष्य कदाचन, ऐसे लोगों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए आदेश है नारद मुनि का। नारद मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता, कृष्ण की पूजा नहीं करता, वो मृत के समान है, मरा हुआ व्यक्ति है, और ऐसे मरे हुए व्यक्तियों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। तो जब भीष्म ने गुणगान किया कि किस प्रकार कृष्ण ये सूर्य के समान है, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, इस श्लोक को हम लोग अगली बार और चर्चा करेंगे। ये गुणगान प्रारंभ हुआ है, बहुत लंबा गुणगान है कृष्ण का, और इस गुणगान को हम सबको सुनना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगली बार आप सब समय पर आइएगा, भीष्म के द्वारा कहे गए श्लोक, नारद मुनि, व्यास देव, सहदेव, इन सब ने कृष्ण का गुणगान किया है। तो अगला सत्र जो महाभारत का होगा ये केवल कृष्ण गुणगान पर होगा। आप सबसे विनती है कि आप सब समय पर आए और इस गुणगान को सुने ताकि कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।